السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا علیہ الرحمۃ رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو بے سراغ لے کے چلے. میرے دوستوں اور حاضرین جلسہ، دنیا کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کا جلوہ آپ کو نظر آئے گا. ہر چیز میں ذرہ ذرہ اللہ تعالی کی قدرت کا مظہر ہے. اگر اس کی قدرت دنیا سے اٹھا لی جائے تو یہ سب دنیا فنا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو ہم زندہ ہیں، اور اپنی حفاظت اور قدرت کو ہٹا لے تو ہماری موت ہو جائے. سورج چمک رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے چمک رہا ہے. چاند میں چاندنی ہے، اللہ کی قدرت سے. دریا میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، اللہ کی قدرت سے. ہوائیں تمہیں ٹھنڈک اور آکسیجن پہنچا رہی ہیں، اللہ کی قدرت سے. تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ کی قدرت سے. زبان بول رہی ہے، اللہ کی قدرت سے. اور یہ دماغ کا کمپیوٹر چل رہا ہے، اللہ کی قدرت سے. ہر جگہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے. کوئی اسے مانے نہ مانے یہ الگ بات، سمجھے نہ سمجھے یہ الگ بات ہے، لیکن جو اللہ تعالی کا عرفان رکھتے ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں ہر گیا ہے کہ یہ زمین رویت وحدہ لا شریک لہ رویت. عارف جو اللہ کا جاننے والا ہے وہ ایک گھاس کے دانے کے اندر جب قوم نکلتی ہے اور زمین کو چیر کر کے وہ باری ٹہل کی چیز نکلتی ہے تو دیکھ کر جھوم جاتا ہے, وہ پکارتا ہے کہ ہر کے آگے کی یہ زمین ہو جائے. ہر گھاس جب زمین سے اگنا شروع ہوتی ہے تو تم کو پتا ہے وہ کیا کہتی ہے؟ کبھی سنا ہے؟ یہ اللہ والے کے کان ہیں کہ گھاس کا پودا جب نرم و نازک زمین سے اگتا ہے تو کچھ بولتا ہے. ہم نے کبھی اس کی بولی نہیں سنی, اس کی بولی غوث پاک نے سنی ہے. اس کا بیان غریب نواز کے سامنے سنا, وہ کیا کہتا ہے؟ ہر کے آگے کہ از زمین ہو جاتا وہ دہو لا شریک لہ ہو جاتا. وہ ایک اکیلا ننا چھوٹا سا پودا جس میں نہ شاخ ہے نہ پھول ہے نہ پھل ہے نہ کوئی پتی ہے, یہ بڑھا ہوا ایک نوکیلا پودا نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کا کوئی شریک. اللہ کو وحدہ لا شریک کہتا ہے, اللہ کی قدرت بتاتا ہے ایک ہے. دیکھو میں بھی آج ایک ہی مل رہا ہوں, ایک ملنا ہے. اب اس ایک کو ایک نے ایک کو نکالا ہے. یہ پودا یہی کہتا ہے دیکھو آج میں ایک ہوں, دس دن کے بعد آپ دیکھو گے تو وہ پھولتا ہے, وہ پھٹتا ہے اور اس میں دو دو پتیاں نکلتی, پھر دو نکلے. ہر پودے کا یہی حال ہے, دو نکلے. اب یہ پودا بولتا ہے ایک نے ایک کو بنایا, اب اسی ایک نے دوسرے کو بنا دیا. اب وہ دو ملے, اب دو کے بعد دس دن کے بعد اور دیکھو تو تین چار پانچ وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس میں شاخ نکلتی ہے, ہر شاخ میں کتنے پتے ہوتے ہیں, وہ بڑھتے بڑھتے ایک پلانٹ اور پودا بن جاتا ہے. پھر ایک پودے میں ہزاروں پتیاں اور ہزاروں پتیوں کے ساتھ سینکڑوں پھول اور سینکڑوں پھول کے بعد پھر پھل آتا ہے جی. اور جب وہ پھلتا ہے تو یہ سمجھ سمجھو کہ وہ ایک نکلا تھا, ہزاروں پھل آئے, پھر اس ہزاروں پھل کے اندر اس نے بیج پیدا کر دیا, ایک بیج بھی اندر گیا تھا اور وہی بیج پھر آیا. نہیں سمجھے؟ ایک گیہوں کا دانا آپ نے زمین میں ڈالا تو وہ آپ کی نگاہوں سے چھپ گیا, منا ہو گیا, آپ سمجھیں گے کہ سڑ گیا گل گیا, لیکن وہ کہتا ہے میں زندہ ہوں, یہ اللہ کی قدرت ہے. میں قبر میں ضرور تم نے مجھے ڈال دیا لیکن میں مرا نہیں, میرا پیغام تھوڑی دیر میں دیکھنا کہ وہ پھر ہو سکتا ہے. اور یہ اس رب کی قدرت کا پیغام ہے. اور ایک دانہ جب نکلا ہے تو ایک جھاڑ اور پودا بن گیا ہے, پھر اس پودے کے اندر ایک نہیں ایک دانے میں سات سات سو دانے نکلے. گیہوں کا ایک بھٹا ہوتا ہے اور اس میں سو دانے ہوتے ہیں اور ایک ایک پودے میں سات سات بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی کے اندر سو دانے, تو ایک دانے کا پیغام کتنا ہو, کتنا ننگنا ہونا جس کو قبر میں ڈال دیا, نگاہوں سے چھپ گیا اور تم سمجھتے ہو مر گیا سڑ گیا گل گیا. اندر سے وہ کہتا ہے نہ میں گلا ہوں نہ سڑا ہوں, تمہاری نگاہوں کا دھوکہ ہے, میں پڑا ہوں اور ایسا پڑا ہوں کہ رب کی قدرت کا مجھے سہارا ہے, پھر نکلا, ایک اندر گیا سات سو باہر تمہیں دے رہا ہے. یہ کس کا پیدا ہے؟ اسی قدرت کا پیدا ہے. लोगों, एक दाने को सड़ना गलने वाला मत समझना, वरना पेट तुम्हारा ऐसी भूख के मारे चिपक जाए। मेरी कुदरत पर ईमान रखो, एक दाना तुमने कब्र में डाला और सांस हो उसका पेश तुम्हारे सामने आया। बिना तमसील मैं अर्ज करता हूँ, ये औलिया आए के राम को हम जमीन में दफन करते हैं, वह बड़ा ये कहता है कि वो मर मर गए, गल गए, सड़ गए। अबे तू मर, तेरा बाप मर, तू गल, तू सड़, ये सड़ने वाले दाने नहीं है। दाने दो किस्म के हैं, एक कमजोर होता है वो भी जाता है, सड़ जाता है, कुछ नहीं बनता, और एक अंदर से मजबूत होता है वो फिर जिंदा होकर के 700 देता है। हमारा सुन्नी, हमारा इस्लाम को मानने वाला अंदर से मोहब्बत रसूल का ऐसा मब्ज और विटामिन लेकर के अंदर जाता है, एक जाता है और 700 पैसे दुनिया को देता है। गरीब नवाज एक अंदर गए, आज इतने औलिया इकराम हिंदुस्तान पर नजर आ रहे हैं, जिधर देखो जिधर देखो वलियों का मजार है। किसका मजार? निजामुद्दीन औलिया। किसका फैज है? बख्तियार काकी किसके फैज है? बंदा नवाज किसके फैज है? हर फैज ही फैज नजर आता है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुरा। ये सब फैजान ही फैजान है, लेकिन आंख वालों को ये सब फैजान नजर आता है। भेंगड़ा भेंगड़ा इस फैजान को क्या सकते, उसको तो अजीब अजीब बातें नजर आती हैं। अभी मेरे मौलाना फरमा रहे थे आला हजरत के बारे में, कि आला हजरत ने गरीब नवाज का जिक्र नहीं किया, ये इतना बड़ा झूठ है। इस झूठ को अगर फैलाया जाए तो 1000 मक्का फैला, इतना बड़ा झूठ है। उनका एतराज क्या है कि सदाम में ख्वाजा गरीब नवाज का एक शेर नहीं था। अल्लाह आला हजरत की पूरी तहरीर, पूरी तहरीर आप देखिए, एक नज्म लिखी है, नज्म मुअज्जम आला हजरत के फारसी में। आप जब उसकी शरह, आजकल वो उर्दू में भी छप गया है, मौलाना मोहम्मद अहमद मिसबाही अल जामेतुल अशरफिया ने उसका उर्दू तर्जुमा भी किया है, आला हजरत की शरह भी है। वो शरह में आप देखें तो आला हजरत रजी अल्लाह तआला उन्होंने सैयदना गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हो का ऐसा वालिहाना जिक्र फरमाया। फरमाते हैं कि मेरे दाहिने यानी सीधी आंख में कुछ तकलीफ हुई, सैयदना सरकार आला हजरत फरमाते हैं, मैंने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की शान में चंद अशआर लिखे और वहां फातिहा पढ़ने गया। वहां से फिर मैं दिल्ली, निजामुद्दीन दूर था उस जमाने में, दिल्ली आने का, मैं दिल्ली आया और उस जमाने में इस आंख का इलाज करने मैं दिल्ली आया था। आंख में तकलीफ थी और वो आंख कुछ दबी हुई नजर आती थी, कसरत मुताला से फरमाते इतनी किताबें पढ़ता था दिन रात कि उसकी वजह से आंख की रोशनी में फर्क आ गया था। फरमाया कि बहुत मैंने कोशिश की लेकिन आंख में जो तकलीफ थी दूर नहीं हुई। उसके लिए यूं फरमाते हैं, पहाड़ खोदा और एक तिनका भी ना निकला इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन अलैहिर रहमतो व इस्लाम के शान में चंद अशआर लिखे और फरमाते हैं, मैं दिल्ली आया और एक दिन सोया तो मैं ख्वाब देखता हूं कि एक ऐसा पुरबहार और जन्नत निशान मकाम नजर आया। पूरे इलाके में देखा तो चहल पहल, गार्डन ये वो, बड़ा अच्छा मकाम था। और उस जगह मैंने 3 कब्रें देखी, تین قبروں میں ایک قبر جو تھی بہت اونچے اور امتیازی شان کے ساتھ نظر آئی اور وہ حضرت خواجہ غریب نواز کی کا مزار مبارک تھا اور دوسرا اس کے پہلو میں ایک مزار تھا وہ صاحب البرکات سیدنا برکت اللہ شاہ مارہ روی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور تیسرا مزار جو تھا فرماتے ہیں میں نہیں پہچان سکا کہ وہ کس کا تھا. تھوڑی دیر میں نے پائی بھی کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے شروع کی تو میں دیکھتا ہوں کہ بزرگ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک شک ہو گیا اور اس کی مٹیاں ادھر مٹی ادھر سے ادھر گری اور خواجہ غریب نواز معین الحق پہ ودین بڑے الفاظ کے ساتھ لکھے ہیں, میں اس کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں. آپ کا مزار پاک کھل گیا اور آپ شان سے لیٹے ہوئے, پھر حضرت خواجہ غریب نواز کا قد کھلیا بیان فرماتے ہیں. آپ کا قد بہت دراز تھا یعنی ٹھنگنے نہیں تھے, لمبے قد تھے اور داڑھی مبارک کے بال کچھ کالے تھے اور کچھ سفید تھے. چہرہ بہت فاروق جیسے کوئی شہنشاہ تخت پر لیٹا ہوا ہے, پیشانی سے نور جھلک رہا, لب مبارک بہت خوبصورت تھا اور دونوں آنکھیں کھلی گئی. ایسا نقشہ کھینچا ہے جیسے کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو لگتا ہے کہ ہم خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں یہ کیفیت جب میں نے دیکھی تو میرے دل کے اندر ایک اضطراب اور بے قراری پیدا ہوئی اور میں سیدھے دوڑا تو جو مٹی قبر پاک سے نکل کر ادھر ادھر گری تھی اس کو لے کر میں اپنے چہرے پر کر لیا. فرماتے ہیں چہرے پر جب میں نے اس مٹی کو ملا تو میری آنکھ کی تکلیف میں بہت زیادہ مجھے آرام نظر آیا, یہ خواب میں بتا رہے ہیں. اور پھر میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا تو میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی, کیونکہ آپ حافظ بھی تھے. سورہ کہف میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہاں دو تین مجاور بھی بیٹھے تھے, یہ خواب میں بتا رہے ہیں. وہ کہنے لگے یہ کون سا آدمی ہے سورہ کہف کا باب شروع کر دیا ہے, ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور اس نے سورہ کہف شروع کر دیا, یعنی اعلیٰ حضرت کو وہ لوگ برا بھلا کرنے لگے یہ کوئی ٹائم ہے سورہ کہف پڑھنے کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان باتوں کو سن کر مجھے ذرا تکلیف ہوئی تو خواجہ غریب نواز نے میری طرف اشارہ کیا. اشارہ کیا کیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دو, برا مت مانو, تم سورہ کہف پڑھا. فرماتے ہیں کہ میں سورہ کہف پڑھ کر کے دسویں آیت یہاں تک آیا, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس کے بعد چوبیسویں آیت ہے مرفقہ. فرماتے ہیں دسویں آیت یا چوبیسویں آیت تک آیا مجھے یہ خیال نہیں, جب یہاں تک میں پہنچا تو میری آنکھ کھل گئی اور جب آنکھ کھلی تو میں دلی میں تھا. فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے غریب نواز کے قبر پاک کی مٹی اپنے چہرے پر ملی تھی اور میں نے آرام محسوس کیا تو یہ صرف خواب ہی میں نہیں بلکہ جب بیدار ہوا تو دیکھا آنکھ میں آرام ہو گیا ہے اور جو تکلیف تھی وہ دور ہوئی. کتنا علاج کیا لیکن آنکھ میں شفا نہ ہوئی, یہ اعلیٰ حضرت کا وہاں سے تصرف ہے. میں اعلیٰ حضرت کے وجود پاک پر غریب نواز کا تصرف ہے. کہاں کہاں کیسے کیسے واقعات امام احمد رضا نے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے हैं और अपने जाति तजर्बे को भी दुनिया के सामने दे दिया है। इसलिए फरमाया क्या है लोगों, मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु की के मजारे पाक उन जगहों में शामिल किया जाता है जहां इजाजत दुआ होती है यानी दुआ कबूल होती है। दुआ कबूल होने के लिए जो मौलाना ने इशारा किया है उसमें काबा भी है, मीजान रहमत भी है, हकीम भी है, ऐसे ऐसे मुअज्जम मकामात कि जिन जगहों पर दुआ कबूल होती है उसी फहरिस्त में ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुल हक व दीन के रौज़े पाक को भी आला हजरत ने शुमार किया है। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? लेकिन हम उनको जो एतराज करते हैं एतराज करने वाले की तरफ ध्यान ही दे नहीं देते। हम तो सैयदना आला हजरत की वालिहाना मोहब्बत जो आस्थान गरीब नवाज से है उसको हम देखते हैं। देखो एतराज करने वाले के मुंह को कभी आप ढककर नहीं लगा सकते, कितना भी खूबसूरत हो और उससे एतराज करने वाले को कुछ खूबसूरत हो और उसके पूरे चेहरे में कहीं उसको कोई अयब नजर नहीं आया तो वो क्या करता है, मक्खी नाक पर बैठ गई तो उसके मुंह पर मक्खी, उसके नाक पर मक्खी बैठ के अच्छा नहीं लगता है। वो मक्खी जो गंदगी पर बैठती है इतना खूबसूरत आदमी उस नाक पर बैठ गई नाक उसकी गंदी हो गई, ये कोई एतराज है? मक्खी तो कहीं भी बैठती है भाई, तो मक्खी बैठना एतराज की चीज नहीं है, लेकिन जिसके जहन में खूबसूरत होती है वो उसको एतराज समझता है। एक मरतबा एक बड़े मियां थे, दो गरीब आदमी थे, उन्होंने गंधा फाला और उसी से गोज ये वो सब लाद करके लाते मजदूरी करते और शाम को बच्चों के खाने पीने का इंतजाम होता, उनका गंधा गायब हो गया। बेचारे ने बहुत ढूंढा, उनका एक लड़का था बड़ा, दोनों ने मिलकर कर रहे को बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। किसी ने बताया कि इधर देहात में आपका गधा हमने देखा है। ये दोनों बाप बेटे तलाश करते करते उस गांव में पहुंचे तो आखिर वहां वो गधा मिल गया। दोनों उस गधे के गले में रस्सी बांध कर और लेकर चले तो कुछ लोग रास्ते में मिले और कहने लगे कितने बड़े गधे, अल्लाह ताला ने गधा सवारी के लिए बनाया है, कुरान में भी जिक्र है, और सवारी की नेमत होते हुए दोनों पैदल चल रहे हैं। ये जरा हुआ ना, अल्लाह की नेमत का इस्तेमाल करना चाहिए और कुरान से साबित कर रहे। तो बड़े मियां ने कहा बेटा बैठ जा तू, मैं उसकी रस्सी पकड़ के चलता हूं। बेटे ने कहा अब्बा ये लोग एतराज कर रहे हैं हम इधर चल रहे हैं, अगर मैं बैठ के चलूं तो लोग कहेंगे बड़ा बदतमीज लड़का है, उनके को पैदल चला रहा है और खुद फंसा हुआ बैठा। बड़े मियां ने कहा तेरी बात सही है, चलो मैं बैठ जाता हूं और तू इसके रस्सी पकड़ के चल। थोड़ी दूर चले तो कुछ लोगों ने देखा, बोले आज के बाप भी बड़े संगठित हो गए हैं, बेटे को पैदल चला रहे हैं और खुद बूढ़ा उस पर बैठा हुआ। बड़े मियां ने कहा चल तू बैठ जा मैं रस्सी पकड़ के चल। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ लोग मिले, आज की औलाद बड़ी सालिम हो गई, बूढ़े को बैठकर चला रहा और खुद गधे पर बैठा हुआ। तो बड़े मियां ने कहा ये इनका भी कहना सही है, दोनों बैठ गए। थोड़ी दूर चले तो कुछ लोग मुझे बोले खिलाते जाते तो आए नहीं, दुबला पतला लगा दोनों उस पर चले, कहते दोनों जालिम नहीं, वो जितना उठाना चाहिए वैसे रखना चाहिए। बड़े मियां हम सही नहीं गए इजलास करने वालों से। बेटे से कहा बेटा चल मैं भी उतर जाता हूं, तुम भी उतर जा और एक कहीं से बांबू मांस तलाश करके जा और रस्सी लेके जा। बेटे ने कहा आप क्या करेंगे, कहा पीछे का उसका पैर और आगे का पैर दोनों रस्सी से बांध देंगे और अंदर से बांबू काट करके उसको उल्टा करके एक तरफ कंधे से दूर रख लेना है, मैं रख लूंगा घर तो पहुंचना है, गधे को भी ले जाना, पैदल चल रहे थे तब भी है तलाश, तू बैठा तब भी है तलाश, मैं बैठा तब भी है तलाश, दोनों बैठे तब भी है तलाश। अब करें तो कम, क्या करें, घर जाए कैसे? अब यही एक रास्ता है कि गधे को खुद अपने उम्र संभाल कर बेटा जा करके गांव में से लकड़ी लाया और दो रस्सी लेके आया, पिछड़ा और अगला पांव बांधा और उसने डाला बांबू और एक तरफ पालकी जैसे डोली जैसे लेकर लोग सब देखने सके बोल रहे हैं दुनिया में इससे बड़े लड़के कहां मिलेंगे। अल्लाह हमने सवारी के लिए बनाया है और ये कुछ गधे को अपने कंधे पर सवार कर सकता है। तो बड़े ज्ञानी का बेटा लोग लोगों को बुलाया भैया देखो कौन सा मैं तरीका अख्तियार करूं कि लोगों का मुंह बन सके। बोले क्या हुआ? बोले हम दोनों पैदल चल रहे थे तभी लोगों ने हमको दानत पर आमद की, बेटा बैठा मैं चल रहा था तभी बुरा भला कहा, मैं बैठा और बेटा चल रहा था तब भी लोगों ने एतराज करना नहीं छोड़ा, हम दोनों बैठे तब भी हमको दाखिल कहा। अब तीसरा चौथा तरीका यही था कि अब गधे को अपने ऊपर सवार कर दें, वह आप लोग बोलते हैं कि सबसे बड़े गधे ये हैं, आप बताइए घर कैसे देखा जाए, है कोई और तरीका कैसे घर पहुंचेगा भाई लोग? दोनों बाप और बेटे भी पहुंच जाए, गधा भी पहुंच जाए, सारे तरीके उन्होंने इस्तेमाल कर लिए लेकिन हर तरीके पर लोगों ने एतराज किया है। यह है एतराज की दुनिया। आप कहें एतराज से हम बच जाए, नहीं बच सकते, इसलिए आप अगर सत्य हैं तो अपनी सच्चाई पर मुतमइन रहिए, यही सबसे बड़ा एतराज का स्वभाव। सारे मौत इसका जवाब आप नहीं दे सकेंगे और अगर देते रहेंगे तो खाना पीना हराम हो जाएगा, घर तक पहुंचना हराम हो जाएगा। आप सच्चे हैं, हकीकत आपके साथ है, सच्चे शुक्र अदा करो मौला तूने मुझे सच्चाई और हकीकत अदा फरमाई है, एतराज करने वालों को उनके ऊपर मेरी बात सच्ची एक नसीहत है लोगों की। आप बाइक पर चढ़ते हैं, आपने किसका क्या बिगाड़ा? बाइक आपने खरीदा, पैसा आपके पास है, आरटीओ का लाइसेंस आपके पास है, आपने हीरो हिंडा लिया हो क्या होता है, स्प्लेंडर लिया हो, रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड फील्ड के अंदर प्रिंस चल रहा है इसलिए उसका नाम रॉयल कहते हैं, प्रिंस रॉयल फैमिली बादशाहों की फैमिली, और फील्ड में जमीन पर आप दौड़ रहे हैं, कैसी कैसी गाड़ियां हैं आप हैं, लेकिन एक दो चार कुत्ते खड़े थे, आपने न उनको डंडा मारा न आपने उनको भगाया न ईंट मारी, लेकिन आप उनके पास से गुजरे उनका हाल क्या होता, सिर्फ रोकते नहीं भाई, ऐसा भागते है कि अगर वो डेयरिंग वाला ना हो तो अपनी बुलेट से करके नीचे गिरेगा, एक्सीडेंट होगा, और अगर डेयरिंग है हिम्मत है अरे तो क्या करेगा, चला फनफन 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 चला जा रहा। और ये जितनी रफ्तार से आप चलोगे उतनी ही तेजी से कुत्ता दौड़ेगा, नीचे नहीं रह रहा है, लेकिन चलते चलते अचानक वो रुक जाता है, आप मत रुकिए, अगर रुकेंगे तो पॉइंट आपका जीन का कितना मजबूत होगा, चीन रुके के फाड़ आप चलते जाइए, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वहां आकर के अचानक वो रुक जाएगा और चार घोड़ा गिरा करके पीछे चला जाएगा, वो कभी खड़े होकर फिर देखेगा नहीं। हर कुत्ते के अंत का मिजाज यह है कि वो अपने पॉइंट पर आकर के खुद वापस हो जाता है और आप अपनी मंजिल पर चले जाइए, यही हाल आज एतराज करने वालों का है। एतराज करते रहेंगे आपके पास सच्चाई है, आपके पास हकीकत है, तो खुदा की कसम आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, एतराज करने वाले का मुंह भटक जाएगा, वो कुछ आपका बिगाड़ न सकेगा, लेकिन सच्चाई आपके साथ। ये सच्चाई अगर है तो मेरे गरीब नवाज ने इन सच्चाइयों को किस तरह से पेश किया है। क्या आप संघर्ष है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे हैं, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु को हिंदुस्तान की वलायत अता करके भेजी भेजा, और जब बगदाद मुअल्ला से खाजे खाजदान मोईदुल हक बिन वकील सैयदना खाजा गरीब नवाज गुजरे तो लोगों ने आपका इस्तकबाल किया, काफी लोग जमा हुए। वहां पर सात पारसी रहते थे बगदाद, पारसी उनको कहते हैं जो आग की परस्तिश करते हैं, आग की पूजा करते हैं। सात पारसी थे, उन्होंने सुना कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग यहां तशरीफ लाए हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास वो लोग भी मिलने के लिए आए बैठे। गरीब नवाज ने उनके बारे में मालूमात की, उन्होंने कहा कि हम पारसी हैं, आग की पूजा करते हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, तुम आग को क्यों पूछते हो, एक खुदा की इबादत क्यों नहीं करते? तो कहा आग में जलाल बहुत है, हमें डर लगता है कि हमारे मरने के बाद ये हमको जला दे, इसलिए इसको राजी करने के लिए हम आग की पूजा करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया, ये तुम्हारी भूल है, आग अल्लाह की मखलूक है, ये आग तुमसे राजी होगी और तुमको नहीं जलाएगी, ये भूल है, उसे राजी करो, ये आग भी तुमसे राजी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा आपने तो अल्लाह को राजी किया है, इसका सबूत तो इनके आतिश कदे पर जहां आप ये पूजा करते थे, हुजूर गरीब नवाज तशरीफ ले गए और कहा सुनो अल्लाह को मैंने राजी किया और तुमने आग को राजी किया है, चलो आग में अपना हाथ डालो। तो ये साथ के साथ परेशान, बोले हम तो जल जाएंगे, बोले इतने दिन में भी राजी नहीं कर सके, हाथ डालने में आज भी डरते हो? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से उन्होंने मुतालबा किया, आप डालिए। बोले मेरा हाथ तो बहुत ऊंचा है, अपनी नालेने पाक को निकालकर ऐसे आग में फेंक दिया। ये सात पारसी पुजारी देखते रहे, अब नालेन जली, अब आपकी मूर्तियां जली जली जली, खुदा गवाह है ये सच्ची रिवायत पेश कर रहा हूं, जूतियां जलना तो जलना गर्कना, उन जूतियों के आपके शोलों ने गर्म तक नहीं किया, वैसे ही वैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने उस आग से जूतियों को झुका दिया। कहा मियां मेरा हाथ तो बहुत ऊंची चीज है, मेरे कलमों से जिन जूतों को निष्पत है आग पहचानती है कि रब इससे राजी है, उसके जूते को भी ना जला सके उसको राजी करो। जब कलमों का ये फैजान है, एक निश्चित निस्बत एक चमड़े के जूती को हासिल हो गई तो आग उसको छू नहीं रही है। अरे तू तो जूती नहीं है, ऐ मुसलमान सुन्नी तू तो ईमान वाला है, अगर गरीब नवाज से सच्ची निस्बत कायम कर ले तो फैगान यहां को यहां जहन्नम की आग भी जला सकेगी। इसलिए सुन्नियों का मिजाज बिखरा हुआ होना चाहिए, एतराज करने वाला एतराज करता है करने दे, लेकिन अपने दिल के अंदर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की महब्बत का नक्श पैदा कर ले, उनसे रब राजी है, जब गरीब नवाज उससे राजी हो जाएंगे तो रब भी उनसे राजी। एक है महब्बत और एक है महब्बत का सबूत, महब्बत का सबूत होना चाहिए, गरीब नवाज से जबानी मोहब्बत करने से उसका उनका पैसा नहीं मिलेगा। जबान से ऐलान करो, उस ऐलान का सबूत भी तुम्हारे पास हो। आप एक एयर कंडीशन बंगला है, आप ऐलान करके मेरा, मैं इसमें रहूंगा, मैंने खरीदा है, और आपके पास कोई न इंचार्ज है, न कोई डॉक्यूमेंट है, न कोई दस्तावेज है, दादा की दुकान, हलवाई की दुकान और दादा की खातिर तक ऐसा तो नहीं होगा। है हलवाई की दुकान के पास बोल रही है, सब हलवा मिठाई मैंने खरीदी हर साथ, मेरे अब्बा को इसका स्वभाव पहुंचे, मेरे दादा को इसका स्वभाव पहुंचे, अरे मिठाई खरीद और फिर अल्फातिहा पढ़, तो एक मिठाई के टुकड़े का स्वभाव तुम्हारे दादा और बाप को मिलेगा। ये कंडीशन बदला खड़ा हो गया, मेरा है, अरे तुम्हारा है, तुम्हारे पास सबूत क्या है? बोले मेरे पास कोई सबूत नहीं, तो घुसने देगा कोई? जाओ सड़क पर माल खरीद, घर का सामान लेकर आए, मेरा है, मैं घुस रहा हूं, मारेंगे डंडा और सर फाड़ डालेंगे। जब ऐलान करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट अपने पास रखना चाहिए, और जब हम खाजा बुजुर्ग की मोहब्बत का ऐलान करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट हमारे क्या पास चाहिए कि वाकई खाजा गरीब नवाज से हम सच्ची मोहब्बत है। अगर सच्ची मोहब्बत हो जाए, मैं सारे उलमा की गवाही के साथ कसम खाकर कहता हूं, जिसमें सच्ची मोहब्बत हो जाए, ये एलियन वाले तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेंगे, और तुम्हारी तक तुम्हारा रो, तुम्हारा दबदबा हर पहले कुफ्र के और पहले बाकी के सीने पर अल्लाह ताला फायद कर गरीब नवाज आए थे, कभी भी सच्ची मोहब्बत लेकर आए थे, क्या हुकूमत के वक्त में उनका क्या बिगाड़ लिया? सब बिगड़ गए, इतर बितर हो गए। मेरे खाजा का गुंबद आज भी उसी जगह हरा भरा है, उसी जगह बरकतों का निशान बना हुआ है। सारी दुनिया के लोग आकर अपनी अकीदत की विशाल दिखाते हैं। आखिर वजह क्या है? इसलिए कि जो खाजा बुजुर्ग ने ईमान और मोहब्बत का दावा किया था उसका सबूत भी दे गए। हम ऐसा सबूत तो नहीं दे सकते हैं, थोड़ा बहुत तो सबूत दे सकते हैं। आप बोलोगे वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? मैं आपसे पूछूंगा, खाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला उन्होंने कितनी नमाज छोड़ी? आप एक सेंटर छोड़ा? मैंने तो पूरी तारीफ में देखा है, एक सजदा तो सजदा, फर्ज तो फर्ज, आपने सुनत और नवाफिल भी नहीं छोड़े हैं। रात रात आपने जनाबे मुस्तफा की सुन्नत अदा करके नमाजें अदा की है, और आज हमारा हाल यह है कि हम दुनिया की हमा हमी और रंगा रंगी में ऐसे मुब्तला हैं कि मस्जिद पुकारता है हैया अला सलाम, हैया अला फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो हमारे कान सुनने के लिए तैयार नहीं। हम क्यों नहीं दौड़ते जब हमें बुलाया जा रहा है? आओ आओ आओ, नहीं दौड़ते। अगर किसी गवर्नमेंट की तरफ से आवाज हो कि आओ, तुम्हें सोने का बिस्किट मिलेगा 10:15 पर, जो यहां पर कोई जगह इसी हाल में, इस हाल का नाम क्या? एस ए एस 10 फंक्शन हाल में 10:30 पर जो पहुंच जाएगा, और 10:30 से लेकर के 10:30 के बीच में जितने लोग पहुंचेंगे, सबको गवर्नमेंट की तरफ से एक एक सोने का बिस्किट दिया जाएगा। जबकि ऐलान हो तो नहीं है सर, खाना छोड़ दो, अजीब एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में, उसकी भी परवाह नहीं। जब भाग रहे हैं, दे भाग रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, फोर व्हीलर से आ रहे हैं, ऐलान हुआ है हुकूमत का, दस बजकर के 20 मिनट से लेकर 10 बजकर के 30 मिनट के अंदर अंदर जो पहुंच जाएगा, गेट खुला हुआ है, उसे ये इनाम मिलेगा। अरे आज पहुंच भी गए और गेट से दाखिल होने के लिए क्या हाल हो, ये आप कॉमन सेंस की बात कर। और यहाँ आए गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं आज नहीं कल मिलेगा। तो हमको धोखा हो गया, मेरे रब का इनाम धोखे वाला नहीं होता है। उसके दरबार का गेट खुला हुआ है, लिमिटेड वक्त भी नहीं है। वहाँ तो मुस्तफा के बैंक में एक सोना नहीं, हजारों किलो सोना तुमको मिलेगा। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, खास होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खास होकर इश्क में आराम से सोना मिला। और जान की एक सीर है उल्फत रसूल लावटी, ये है वहां भी सोना बट रहा है। यहाँ तो आओगे तो बोल देंगे नहीं, जीएसटी जो बढ़ेगा उसी को भी देगा। जीएसटी का नाम जैसे सुना तो जी अपना एसटी एसटी हो गया। चलो भाई जीएसटी कहाँ से हम भरेंगे, चले गए। अच्छी हालत है यहाँ पर, और अल्लाह ताला का दरबार खुला है, खुलाया जा रहा है। आप उन्हें कहो ले लो, अय्या अलग करा, अय्या अलग करा। हम जाते हैं, क्यों नहीं जाते भाई, क्या उसे पैसा लगता है? अल्लाह ताला के जाओगे तो नमाज पढ़ोगे तो जीएसटी लग जाएगा, वेट लगेगा। कौन सा टैक्स लगता है? खुदा की कसम, जान की एक सीर है, कुल पत्र अल्लाह वालों की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मस्जिदों में सर झुका दो। आज ये तुम्हारी परेशानियां और ये जो हालियां खत्म हो जाएंगी। शबीर जबलपुरी कहता है, बहुत बड़े शायर थे, सुनने थे, हमारे इलाके के थे, वो कहते हैं, गरीब के मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, गरीब के मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इख्तदार अपनी। सारा इख्तदार हमारा चला गया, गरीब नवाज ने इतना बड़ा इख्तदार दिया, छह सात सात सौ साल तक हमने यहाँ पर हुकूमत की, लेकिन जब मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा और उनकी फरमा बरदारी को छोड़ दिया, तो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इख्तदार। फिर हमें क्या करना चाहिए? वो कहते हैं, हमें करनी है शाहनशाह बता की रजा जोई। ख्वाजा ने जो किया था, गौसे पाक ने जो किया था, वो काम हमें करना है। हमें करनी है शाहनशाह बता की रजा जोई। अरे वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, उन्हें अपना बना लो, अल्लाह की रहमत खुदा की कसम तुम्हारे चलते फिरते आगे पीछे चले। और ये वो फैक्ट है, वो सच्चाई है, जिसका इंकार नहीं किया जा सकता। जब तक मुसलमान गरीबों के दिलों में ये जोश और हौसला रहा, कैसरो कैसरा पीछे पीछे गुलाम बनकर चलते। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं, सूरज इस तरफ निकला, इधर कौन सा मगरिब इधर है, मशरिक इधर, इधर से निकलता इधर डूबता है, समझिए सूरज निकल रहा है और आप मशरिक की तरफ मुंह करके खड़े हैं या चल रहे हैं, तो आपका साया इधर पड़ेगा, पीछे पड़ेगा ना, पीछे पड़े। आप चल रहे हैं मशरिक की तरफ, सूरज भी मशरिक में है तो साया मगरिब में आपके पीछे पीछे होगा। जितनी तेजी से आप चलेंगे साया जो उतनी तेजी से चलेगा, आप रुक जाएंगे साया भी रुक जाएगा, आप बैठ जाएंगे साया भी बैठ जाएगा, आप लेट जाएंगे साया भी लेट जाएगा। इतना आपका वफादार है वो साया, हर आपके एक्शन और एक्टिंग को वो नकल करता है, उसकी कॉपी कर रहा है, आपके पीछे पीछे कदमों से लगा हुआ चला जा रहा है। लेकिन आप थोड़ी देर इधर चले थे और खड़े होकर आपने अपना डायरेक्शन बदल दिया, चेहरा कर लिया मगरिब की तरफ और पीठ कर लिया जिधर सूरज है मशरिक की तरफ। अब बताइए आपका साया किधर पड़ेगा? ये आपके अब आगे हो गया, साया अपना डायरेक्शन नहीं बदल रहा, सूरज अपना डायरेक्शन नहीं बदला, बदला कौन? आप बदले, अपने को बोलो ना चलने वाले तो बात, आप बदले हैं, आप चेंज हुए हैं। आप जब मशरिक की तरफ चल रहे थे साया गुलाम बनकर आपके पीछे पीछे चलता, आपने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब आप चलिए आपका साया किधर जाएगा? भागेगा, पकड़ लो तो हम 100 रुपये इनाम दें। जितनी तेजी तुम दौड़ोगे उसको नहीं तेज वो भी दौड़ेगा, और जमा लोगे वो भी रुक लो, और जब रुक गए आप पकड़ना चाहो नहीं पकड़ पाओगे। पहले साया कदमों में लिपटा हुआ गुलाम की तरह पीछे पीछे चल रहा है, डायरेक्शन आपने बदल दिया, सूरज को पीठ दे दिया। अब साया बोलता है मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा इमाम। आगे आगे भाग रहा है, आगे आगे बोले हे साया रुक जा, कम एयर भाई बियर वो बियर फियर सब करके वो बियर पीने जाएगा, सुन लो हाथ में नहीं आएगा। तुम क्यों चेंज हुए? अगर साये को गुलाम बनाना है तो इधर ही मुंह करके चलो। ये बात समझ में आती? इस दुनिया को कुरान और हदीस ने साया का देने बताया। ये मुसलमान की गुलाम है दुनिया, कब? जब मुस्तफा के सूरज की तरफ मुंह करके चलो। रसूल सूरज है, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। हबीब हमने आपको अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, वसिराजम मुनीरा और चमकता सूरज बनाकर भेजा है। मुस्तफा सूरज की तरह है और हम नबी के भागने वाले हैं, तो मुस्तफा की तरफ मुंह करके चलो। डायरेक्शन अगर मुस्तफा की तरफ रहेगा, दुनिया गुलाम बनकर के साये की तरह तुम्हारे पीछे जाएगी, और तुमने मुस्तफा के चमकते सूरज उनकी शरीयत से फेर दिया है तो दुनिया तुम्हारी इमाम बन जाएगी, तुम दुनिया के गुलाम बन जाओगे, न इधर के रहोगे न उधर। यही मेरे गरीब नवाज ने सिखाया है। पूरी जिंदगी चाहे वो पहाड़ की चट्टान आ रही हो, या जयपाल का जादू हो, या राजा पृथ्वी का जुल्म हो, हर हाल में मुस्तफा की तरफ मुंह करके चले थे तो सारी हुकूमत उनकी गुलाम बन गई। आज भी उस पूरी जमीन पर मेरे राजा की हुकूमत काम कर रही है। आज भी अगर हम सैयदना सरकार मोइनुल हक वदीन ख्वाजा फरीद नवाज के पैगाम से पूरा पूरा फैज हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ एक सूरत यह है कि हम शरीयत की तरफ मुंह करते चले और खुराफात से अपने आप को बचा लें। इंशाअल्लाह इस गए गुजरे जालिमाना जमाने में भी हमारी धार होगी, हमारी जिंदगी हर तरह से अमन होगी। रबुल्लाह भी अपने ऐसा अपने कर्म से पहचाने आजा फरीद नवाज से सारे मुसलमानों को माला माल फरमाए, और आज भी उनका पहचान है, उनकी चश्मे करम है। जब तो हम यहाँ जी रहे हैं, वरना यहां तो हमको 32 दांतों के दरमियान जबान की तरह मेरे राजा ने हमको महफूज रखा है, वरना ये तो पीस करके खा जाए। आज भी ख्वाजा का ये फैजान है, इस फैजान से फायदा हम उठा रहे हैं कि हाँ अल्लाह अकबर की सदा मस्जिदों में बुलंद हो रही है, हज के लिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत खुशाविंद है, ये जो फैजान है ख्वाजा बड़ी नवाज है। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।